नमस्कार भारत, तारीख 1 मार्च, दिन बुधवार। मैं हूं मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज पहली बार संबोधित करेंगे संसद के संयुक्त सत्र को। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए जीडीपी 7.1% रहने का अनुमान। क्या भारत की अर्थव्यवस्था पर नोटबंदी का असर दिखा?
आशंकाएं उतनी सच साबित नहीं हुई, लेकिन जितना उत्साह 8 और 9% वाली ग्रोथ रेट का था, वहां तक भी बात नहीं पहुंची।
ऑस्कर में लॉयन भले ही अवार्ड न जीत पाई हो, लेकिन मुंबई के 8 साल के सन्नी पवार ने सभी का दिल जरूर जीता।
जब वो छोटा था तो मुझे पता था मम्मी मैं क्रिश जैसा बनना चाहता हूँ, सब दुनिया पे छा जाना चाहता हूँ। सच्ची में उसने पूरा दुनिया में पूरा पब्लिसिटी ऐसा किया कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चे ने ऐसा सोचा, उसने करके दिखाया।
खबरें और भी होंगी, लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, अमर शर्मा से। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर बाद अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को पहली बार संबोधित करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि वे सैन्य खर्चों को बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कायापलट करने की अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। इससे पहले ट्रंप ने कहा था कि अतिरिक्त लागत के लिए पैसा तेज हुई अर्थव्यवस्था से लिया जा सकता है। बीबीसी उत्तरी अमरीका के संपादक का कहना है कि कांग्रेस में रिपब्लिकन सांसद बजट घाटा बढ़ाने वाली किसी भी प्रतिबद्धता का विरोध कर सकते हैं। सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एबीसी न्यूज से कहा कि ऐसी किसी भी विचार की कोई जगह नहीं है।
A budget this lean would put those who serve overseas for the State Department at risk.
इतने कम बजट के कारण विदेश विभाग के विदेशों में तैनात कर्मचारियों पर खतरा मंडरा सकता है, और यह होने वाला नहीं है। लिंडसे ग्राहम के शब्द। सीरियाई सरकार पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिश पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। सुरक्षा परिषद के सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन और अन्य देश विद्रोहियों के कब्जे वाले इलाकों पर रासायनिक हथियार के कथित इस्तेमाल के लिए दमिश्क को दंडित करना चाहते थे। ये 7वां मौका है जब रूस ने सीरिया पर प्रतिबंध लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रखे गए प्रस्ताव पर वीटो किया है। रूस के वीटो लगाने के बाद चीन ने भी रूस का समर्थन किया। राष्ट्रपति पुतिन का कहना है कि प्रतिबंध लगाने से सरकार और उसके प्रतिद्वंदियों के बीच जिनेवा में चल रही मौजूदा शांति वार्ता को कमजोर हो जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में चीन के राजदूत लियो जीएई ने सीरिया पर लाए गए प्रस्ताव पर मतदान के बाद सुरक्षा परिषद से कहा कि अभी तक ऐसा कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि सीरियाई सरकार ने रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल किया है। सीरिया में जहां तक रासायनिक हथियारों का सवाल है, इस बारे में परिषद ने बीते समय में सीरिया में रासायनिक हथियारों के जखीरे को खत्म करने के मामले में महत्वपूर्ण नतीजे हासिल किए हैं। रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल किए जाने को लेकर जांच अभी भी जारी है, इसलिए अभी किसी अंतिम फैसले पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगी। लियो जीएई के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते अमेरिका के कैंसास में हुए हमले की निंदा की है, जिसमें एक भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोतला की मौत हो गई थी। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता सारा सैंडर्स ने कहा कि ऐसा लगता है कि यह हमला नस्लीय नफरत से प्रेरित था। एक पूर्व अमरीकी नौसैनिक एडम पोरिंटन को हत्या का दोषी ठहराया गया है। चश्मदीदों का कहना है कि पीड़ितों पर गोली चलाने से पहले वो चिल्ला रहा था कि मेरे देश से बाहर निकलो। इस घटना में श्रीनिवास के दोस्त आलोक मदासानी और इन्हें बचाने की कोशिश कर रहे एक अमरीकी व्यक्ति घायल हो गए थे। श्रीनिवास का कल हैदराबाद में अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। फ्रांस में 4 युवतियों को चरमपंथी हमले की योजना बनाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। फ्रांस की मीडिया का कहना है कि 14 से 18 साल की ये युवतियाँ इराक में रह रहे और नए लड़ाकों की भर्ती करने वाले रिचर्ड कासिम नाम के एक फ्रांसीसी इस्लामिक स्टेट लड़ाके से सोशल मीडिया पर जुड़ी हुई थीं। ये सभी युवतियाँ कासिम से अति सुरक्षित टेलीग्राम संदेश सेवा के जरिए बात करती थीं। रिचर्ड कासिम को फरवरी महीने में अमरीकी ड्रोन हमले में निशाना बनाया गया था। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि इन युवा महिलाओं ने हिंसक कार्रवाई करने की संभावना पर चर्चा की, और उनका कहना है कि इन्होंने इराक या सीरिया के किसी युद्ध क्षेत्र में जाने की योजना बनाई हो। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि मोटापा और कैंसर के बीच मजबूत संबंध है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम को आप रेडियो के साथ साथ bbchindi.com पर भी लाइव सुन रहे हैं। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर में अमेरिकी संसद के संयुक्त सत्र को पहली बार संबोधित करने वाले हैं। इसे हर साल स्टेट ऑफ द यूनियन भाषण कहा जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बनने के पहले साल इसे राष्ट्रपति के संबोधन के नाम से जाना जाता है। पूरी दुनिया की नजरें आज उनके इस संबोधन पर है कि वो क्या कहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि राष्ट्रपति बनने के बाद से उन्होंने एक के बाद एक कई अध्यादेश जारी किए, जिनमें से तमाम विवादित रहे। सीधे कार्यक्रम में हम चल रहे हैं वॉशिंगटन बीबीसी संवाददाता ब्रजेश उपाध्याय के पास। ब्रजेश, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो संबोधन है इतना महत्वपूर्ण क्यों है?
देखें मोहनलाल, अब से एक घंटे में ये भाषण शुरू होगा और राष्ट्रपति ट्रंप के लिए पहला मौका होगा कांग्रेस के साझा सत्र को संबोधित करने का, अपनी नीतियों से उन्हें अवगत कराने का और एक तरह से उन्हें समझाने का कि वो जो कर रहे हैं वो देश के हित में है। काफी हद तक ये भारत में जो राष्ट्रपति हर साल संसद के साझा सत्र को संबोधित करते हैं उसी तरह का मौका होता है। और दूसरी बात, ये बड़ा मौका है पहले ट्रंप के लिए कि पहले अपनी ही रिपब्लिकन पार्टी के सदस्यों को एकजुट करने का, जो उनकी नीतियों पर काफी बटे हुए हैं और सवाल उठा रहे हैं, और साथ ही डेमोक्रेट्स को ये भरोसा दिलाने का कि वो पूरे देश को साथ लेकर चलना चाहते हैं, जो काफी मुश्किल काम होगा, खासतौर से जिस तरह के चुनावी अभियान चलाया उन्होंने और उसके बाद जिस तरह के सरकारी फरमान जारी करने की कोशिश की है उन्होंने। ये प्राइम टाइम यानी शाम के 9 बजे होता है भाषण, लेकिन इसको देखने वालों की तादाद हर साल घटती जा रही है। लेकिन ट्रंप, जैसा कि आप जानते हैं, कुछ न कुछ विवादास्पद कहने के लिए जाने जाते रहे हैं और इसलिए देखने वाली बात होगी कि कितनी बड़ी तादाद में लोग इसे देखते हैं।
हम लोगों को लगता है कि भले ही इसकी, आप कह रहे हैं कि तादाद कम होती जा रही है, लेकिन आज इसकी तादाद जरूर बढ़ जाएगी। किन किन मुद्दों पर ब्रजेश ट्रंप बात कर सकते हैं?
देखिए, अंदाजा है कि ये पहले जो उनके दिए गए भाषण हैं उनके मुकाबले एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश करने वाला भाषण हो सकता है। आप्रवासन एक बड़ा मुद्दा होगा और अंदाजा मिल रहा है कि ट्रंप एक लचीला रुख दिखा सकते हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार संभव है कि बगैर दस्तावेज के यहाँ रह रहे लोगों को सिस्टम में लाने की बात हो, उनके बच्चों को जो बहुत छोटी उम्र में अपने माँ बाप के साथ यहाँ आए थे उन्हें नागरिकता देने की भी बात हो सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा होगा और बुधवार को अंदाजा है कि ट्रंप उस आदेश को एक नए रूप में जारी कर सकते हैं जिसके तहत 7 मुसलमान बहुल देशों से आने वालों पर रोक लगी थी और फिर अदालत ने उनके आदेश पर रोक को रोक दिया था। संभव है उस पर वो कुछ कहें। कैंसस राज्य में जो 2 भारतीयों पर हमला हुआ जिसमें एक की मौत हुई, उसका जिक्र शायद वो पहली बार करें क्योंकि अभी तक उसकी बात नहीं की है उन्होंने। साथ ही नेटो गठबंधन का पूरी तरह साथ देने की बात कर सकते हैं, लेकिन ये भी कहेंगे कि नेटो देशों को उसका खर्च वहन करना होगा। और आईसिस को हराने के लिए नई भागीदारियों की भी बात कर सकते हैं, यानी इशारा रूस के साथ मिलकर काम करने की तरफ भी संभव है कि वो हो सकता है।
ब्रजेश, बहुत संक्षेप में, सुबह सुबह ही उन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति भवन से जो सूचनाएं लीक हुई हैं उनमें पूर्व राष्ट्रपति ओबामा का हाथ था।
जी देखिए, जिस तरह से पिछले दिनों में व्हाइट हाउस से खबरें लीक हुई हैं उसे लेकर ट्रंप की टीम में तो बौखलाहट है ही, वो खुद बेहद नाराज हैं। अमेरिकी मीडिया के अनुसार व्हाइट हाउस के अधिकारियों के फोन्स और ईमेल्स तक की जांच की गई है कि कौन लीक कर रहा है खबर को, और उसी के तहत उन्होंने पहले इशारा किया था कि लीक करने वाले ओबामा के लोग हो सकते हैं और आज उन्होंने सीधे तौर से ओबामा पर उंगली उठा दी। यहां तक ये भी कहा कि देश भर में जो विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें भी ओबामा का हाथ हो सकता है। तो ये काफी हद तक पुरानी परंपराओं को तोड़ा है उन्होंने, जिसमें मौजूदा राष्ट्रपति पुराने राष्ट्रपति पर कोई हमला नहीं करता है। लेकिन ट्रंप ने, जैसा कि आप जानते हैं, सब कुछ अपने तरीके से अपने अंदाज में किया है, इसलिए इसमें किसी को आश्चर्य नहीं हो रहा है।
तो नजरें रहेंगी कि आज ट्रंप अपने संबोधन में क्या कहते हैं। वॉशिंगटन से सीधे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ब्रजेश उपाध्याय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 5875, 7430, 9560, 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
आप सुन रहे हैं बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत। पिछले साल नोटबंदी ने पूरे भारत को हिलाकर रख दिया था और कयास लगाए जा रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के इस कदम से अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। लेकिन कल शाम केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने कहा कि चालू वित्त वर्ष में विकास दर का जो अनुमान पेश किया गया वो कुछ और ही तस्वीर पेश कर रहा है। वर्तमान वित्त वर्ष के लिए GDP विकास दर 7.1% रहने का अनुमान लगाया गया। आंकड़ों के मुताबिक दूसरी तिमाही में विकास दर 7.3% थी। इन आंकड़ों के मुताबिक नोटबंदी का विकास दर पर ज्यादा असर नहीं पड़ा। कम से कम आर्थिक विकास के ताजा आंकड़े तो यही बता रहे हैं कि नोटबंदी ने अर्थव्यवस्था की रफ्तार में कोई ब्रेक नहीं लगाया है। लेकिन विश्लेषक क्या सोचते हैं? हमारी सहयोगी हरिता कांडपाल ने यही सवाल पूछा आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक से।
देखिए, एक तो ये कि आंकड़े पूरी जो ओवरऑल GDP ग्रोथ रेट है 7% के आसपास रखी है तो उसको झुटला दिया। इसके अलावा इसमें एक बहुत पॉजिटिव चीज है, कृषि की जो विकास दर है अक्टूबर दिसंबर में 6%, ये बड़ा पॉजिटिव है। और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में थोड़ा सा प्रॉब्लम दिखाई पड़ता है, पिछले साल इसी अवधि में 10.6% की रफ्तार से बढ़ी थी, इस बार 7.7% की रफ्तार से बढ़ी है। तो उस कमी की बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन नोटबंदी के चलते जैसी आशंकाएं थी, एक आशंका तो ये थी कि पूरे साल की GDP घट के 3.5% रह जाएगी और अक्टूबर से दिसंबर के क्वार्टर में खाली 1.5% की ग्रोथ रेट रहेगी, तो आशंकाएं उतनी सच साबित नहीं हुई। लेकिन जितना उत्साह 8 और 9% वाली ग्रोथ रेट का था वहां तक भी बात नहीं पहुंची।
सारा आकलन जो है एक तरह से संगठित क्षेत्र को लेकर किया जाता है, क्या असंगठित क्षेत्र जिस पर की कहा जा रहा था कि नोटबंदी के सबसे ज्यादा मार पड़ी है, गिनती नहीं है या फिर उसका क्या इसमें रोल है?
देखिए, असंगठित क्षेत्र का हाल ही है, अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का मैं इंटरव्यू पढ़ रहा था तो उनका कहना था असंगठित क्षेत्र का डेटा इनफैक्ट सरकार के पास भी ज्यादा है नहीं, वहाँ चीजें उम्मीदों से चलती हैं, वहाँ चीजें अनुमानों से चलती हैं। तो नोटबंदी का अगर सर्वाधिक असर साफ तौर पर विजिबल जो दिखाई पड़ा वो असंगठित क्षेत्र में दिखाई पड़ा है, जिनकी गिनती आप बड़े ऑफिसेज में नहीं कर सकते, जिनको बड़ा कॉर्पोरेट सेक्टर नहीं मान सकते। तो उसकी मतलब या तो यहाँ रिकॉर्डिंग उसकी नहीं है या ये रिकॉर्डिंग उस तरह की नहीं है जिस तरह की एक्चुअल में होनी चाहिए। ये तो बहुत साफ दिखाई पड़ता है कि छोटे जूते की फैक्ट्री बंद हुई, तमाम सब्जी मंडियां बंद हो गई, इंदादर की छोटी फर्म्स बंद हो गई।
इसका मतलब ये कि अर्थव्यवस्था की जिसमें असंगठित क्षेत्र का भी अपना एक पूरा हिस्सा है वो सही तस्वीर पेश नहीं हो रही है।
आप बिल्कुल कह सकते हैं कि असंगठित क्षेत्र की समस्याएं इस आंकड़े में रिफ्लेक्ट नहीं होती। दरअसल होता यह है कि अगर आप इसमें देख लें तो 7% का जो आंकड़ा है इसका मतलब ये कतई नहीं है कि इकोनॉमी का सारा की सारा सेगमेंट 7% के हिसाब से बढ़ रहा है। कुछ 10% के हिसाब से बढ़ रहा हो सकता है, कुछ 6% के हिसाब से बढ़ रहा हो सकता है, कुछ 2% के हिसाब से बढ़ रहा हो सकता है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बड़ी कंपनियों का डेटा हमें सेंसेक्स निफ्टी आंकड़ों से पता लग जाता है, लेकिन अब जो छोटी इकाइयों का सीन क्या है, छोटी इकाइयों में बेरोजगारी कितनी हुई, ये आंकड़ा आप इसलिए नहीं रख सकते कि उनका रोजगार कितना ही आंकड़ा आपके पास नहीं होता। तो मतलब आप बिल्कुल मान सकते हैं कि ये आंकड़ा असंगठित क्षेत्र की सही तस्वीर सामने नहीं रखता।
आर्थिक मामलों के जानकार आलोक पुराणिक विश्लेषण कर रहे थे सकल घरेलू उत्पाद की विकास दर का। चुनावों का जिक्र करते हैं। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले में एक ऐसा मतदान केंद्र है जहां चुनाव कोई भी हो मतदान सबसे पहले पंचम लाल कन्नौजिया ही करते हैं, उसके बाद वहां के पूर्व राजा परिवार से आने वाले और मौजूदा समय में कांग्रेस सांसद संजय सिंह और उनकी पत्नी वोट डालती हैं, आम जनता का नंबर उनके बाद में आता है। ऐसा क्यों होता है और क्या सच है, इस प्रथा का निर्वाह क्यों किया जाता है, रामनगर के एक मतदान केंद्र पर समीर आत्मन मिश्र ने यही जानने और समझने की कोशिश की। सुनिए उनकी ये विशेष रिपोर्ट।
चुनाव कोई भी हो लेकिन अमेठी जिले के रामनगर गांव के रहने वाले पंचमलाल सुबह 7 बजे से कुछ पहले ही प्राइमरी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर पहुंच जाते हैं। 80 साल के पंचमलाल कोई रिकॉर्ड नहीं बनाना चाहते बल्कि ऐसा वो एक खास परंपरा का निर्वाह करने के लिए करते हैं।
चुनाव में पहले बार हम डालते हैं, उसके बाद में हमारा राजा डालते हैं, फिर रानी साहब डालते हैं, फिर उसके बाद में आम जनता भी डालती है अपने बुत पर।
कब से ये होता रहा है?
जब से ये मतलब पहले तो हाथ उठाऊगल होता था और जवान में तो हमारे पिताजी थे, अब जब से वो पर्चा पर पड़ने लगा तब से अब हम लोग डालते हैं, पर्चा से डालते थे, अब तो बटन द्वारा हो गया है।
आपसे पहले कोई इस बूथ पे वोट नहीं डालता?
नहीं,
ऐसा कभी हुआ कि आप पहले
नहीं
डाल?
अभी तो ऐसा कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ था ऐसा।
रामनगर मतदान केंद्र से राजा संजय सिंह के महल और प्रजा पंचमलाल के कच्चे घर की दूरी लगभग बराबर थी, सिर्फ दिशाएं अलग थी। बातचीत के लिए जब हम 80 वर्षीय पंचम लाल के घर पहुंचे तो वो खाना खा रहे थे।
परंपरा ये है कि हम उनका प्रजा हूँ और हमारा मालिक है, राजा है, परंपरा के हम धोबी हूँ उनका। अच्छा, हम हमारे खानदान भी धोते पर कपड़ा धोते चले आए, हम भी चले आ रहे हैं। अच्छा, इसलिए वो भी मानते हैं, हम भी मानते हैं कि हमारा मालिक है।
पंचम लाल की बात की पुष्टि तमाम अन्य नागरिक भी करते हैं। मतदान केंद्र से बाहर सबसे पहले मतदान करके निकल रहे एक बुजुर्ग रामबोध से हमने बात की।
तो यहाँ इस बूथ पे सबसे पहले आप ही डाले हैं वोट?
हाँ, 48 पर।
अच्छा,
43 पर है, यही रामनगर के ही रहने वाले,
रामनगर की।
हाँ।
अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ कहा जाता है कि सबसे पहले संजय सिंह आते हैं, उनके परिवार के लोग वोट डालते हैं, तब बाकी लोग लाइन में तब तक लगे रहते हैं, ऐसा है क्या?
होता है, कभी कभी होता है, पहले होता था।
लेकिन बाद में पता चला कि उन्होंने उस बूथ पर नहीं बल्कि दूसरे पर मतदान किया था। इस दौरान रामनगर के प्राइमरी स्कूल में बने मतदान केंद्र पर तमाम लोग लाइन में खड़े थे। उन्हें बताया गया कि ईवीएम मशीन में कुछ खराबी आ गई है।
कई लोग लाइन में लगे हुए हैं, कितने लोग होंगे आप?
लगभग 100 आदमी है।
अच्छा, तो यहाँ तो पहले वो कहा जाता है कि संजय सिंह वोट डालते हैं, ऐसा हमें कुछ लोग बता रहे थे।
हाँ, ये तो नियम रहन है और डल तो रहे राजा, लेकिन आज लेट आए,
इसीलिए मशीन खराब गई,
इसलिए मशीन यूँ खराब हो गया है। 41 नंबर वही देखे ना हम, तो खराब बता होती है।
लेकिन अमेठी के जिलाधिकारी योगेश कुमार रामनगर में ईवीएम मशीन खराब होने की बात से इंकार करते हैं। योगेश कुमार से जब इस बारे में बात की गई तो उनका कहना था,
ये वाला जो प्रथा वाला मामला है, ये आपने राइटली पॉइंट आउट किया, हम इस मामले में सख्त थे, सबके सब लोग हमारे उसमें थे, रडार पे थे। इसमें किसी भी व्यक्ति जो अपने आप को वीवीआईपी क्लेम करें, उनको हम ये मतदान के प्रोसेस में बाधा नहीं करने देने वाले।
दरअसल पंचम लाल कनौजिया जाति के धोबी हैं और इस इलाके में हर शुभ काम की शुरुआत धोबी से कराने की परंपरा रही है। पंचम लाल तभी से इस परंपरा को निभा रहे हैं जब वो मतदान करने लायक हुए थे। हालांकि देश में तब भी लोकतंत्र था, लेकिन पंचम लाल के पिता उन्हें ये परंपरा विरासत में दे गए हैं और निरक्षर पंचम लाल के लिए लोकतंत्र में भी राजशाही की इस परंपरा को निभाना कानूनी तौर पर सही है या गलत, ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन विरासत को संभालने और परंपरा को निभाने का फक्र जरूर है। समीर आत्मज मिश्र, BBC अमेठी।
तो पंचम लाल कन्नौजिया मतदान करते हैं, उनकी कहानी आप सुन रहे थे। हम उत्तर प्रदेश के चुनावों का ही जिक्र कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव वाराणसी में कांग्रेस उम्मीदवार के पक्ष में आए थे अपने मजाकिया अंदाज, और बनारस से सांसद प्रधानमंत्री मोदी के निशाने पर उन्होंने लालू जी ने मोदी को निशाने पर लिया और बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव की याद दिला दी। बनारस से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।
ये कोई और नहीं बल्कि RJD प्रमुख लालू यादव हैं, लेकिन ये सरजमी बिहार की नहीं बल्कि बनारस की है, जो इन दिनों यूपी चुनाव में पूर्वांचल का सियासी अखाड़ा बना हुआ है। वाराणसी के पिंडरा विधानसभा में सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी के लिए मैदान में आए लालू यादव ने PM मोदी के वादे कि काशी को क्योटो बनाऊंगा की चुटकी यूं ली।
हमको किसी ने बुलाया नहीं है, हमको गंगा मैया ने बुलाया। हम पूछा कि गंगा मैया कब बुलाती है, जब संस्कार होता है तब गंगा मैया बुलाती है।
लालू यादव ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और PM मोदी को जुड़वा भाई तक बना दिया और PM मोदी को खूब खरी खोटी भी सुनाई। लालू यादव ने सारी हदें तो तब पार कर दी जब PM मोदी की तुलना किन्नर से कर दी।
सरकार बनेगी,
यूपी के गंभीर जुबानी जंग में अब आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव भी अपने मजाकिया लहजे के साथ कूद पड़े हैं, जो बीते बिहार में चुनाव की याद दिलाता है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि बीजेपी या खुद पीएम मोदी लालू यादव के आरोपों और खिल्ली का जवाब कैसे देते हैं। वाराणसी से बीबीसी हिंदी के लिए रोशन जायसवाल।
लालू यादव भी चुनाव प्रचार में कूद पड़े हैं। क्या एक ऐसा घोषणा पत्र हो सकता है जिस पर कि मोदी, मुलायम सिंह सारे के सारे लोग सहमत हो सकें? अगर इस खबर को आप पढ़ना चाहते हैं तो bbchindi.com पर आइए। अनिल यादव का एक विश्लेषण है जिसका शीर्षक है एक मैनिफेस्टो जिस पर मोदी, मुलायम सब सहमत। इसे पढ़ने के लिए ज़रूर आइए। कार्यक्रम में अब अखबारों का जिक्र करते हैं। बहुत सारे अखबार पलट लिए अमर जी आपने, क्या कह रहे हैं अखबार?
जी, तमाम अखबारों में जो अभी विवाद दिल्ली में चल रहा है छात्र राजनीति
रामजस
कॉलेज का, ये पहली खबर है। लेकिन साथ में जो कैंसास में जो एक भारतीय इंजीनियर की जो हत्या हुई है, एक नस्लीय नफरत जो भरी हत्या है, उसको पर हिंदुस्तान अखबार में इस तस्वीर के साथ उनका कल अंतिम संस्कार हुआ है। पार्थिव शरीर है, उनकी पत्नी विलाप कर रही हैं, वो उनकी नम आँखें हैं इस तस्वीर के साथ। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया में भी पहली खबर इसी को बनाया है इन्होंने अपनी। और लेकिन यहाँ इसके साथ में एक बहुत अजीबोगरीब बात है ये कि अमेरिका में वर्जीनिया स्थित तेलंगाना अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन जो है, उन्होंने एक फेसबुक पर एक एडवाइजरी जारी की है अपने लोगों के लिए जो तेलंगाना राज्य से जो अमेरिका में रह रहे हैं, कि वो सार्वजनिक स्थलों में अपनी मातृभाषा में बात नहीं करें और वो सिर्फ अंग्रेजी में ही बात करें, कि मतलब किसी तरह के
पहचान ना पाए
और टकराव से बचने के लिए। हिंदुस्तान में जो पहली खबर लगाई है, गुरमेहर कौर ने दिल्ली छोड़ी, जो छात्रा है जो बहुत चर्चा में है रामजस कॉलेज विवाद को लेकर। और यही अमर उजाला में है कि सियासत गरमाई वामपंथी छात्रों का मार्च, गुरमेहर ने दिल्ली छोड़ी। तमाम अखबारों में ये पहली खबर है या दूसरी खबर है। दैनिक भास्कर ने लिखा है कि गुरमेहर ने दिल्ली छोड़ी, कहा 20 साल में जितनी दिलेरी दिखानी थी उतनी दिखा दी। आपको बताएं ये जो पूरा मामला है, जो एबीपी कैंपस में सोमवार को एबीपी ने तिरंगा मार्च निकाला था, तो वही मंगलवार को छावनी में तब्दील हो गई थी डीयू और वामपंथी छात्र संगठनों का है। पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ से मंत्री किरण रिजिजू के भी बयान
लगातार ट्विटर पर भी लोग ट्वीट कर रहे हैं और नेता और अभिनेता और सब इसमें। एक कार्टून है बहुत ही जनसत्ता में छपा हुआ है, ये कार्टून इरफान का है और इसमें लिखा हुआ है कि बबुआ आजकल साइकिल से ज़्यादा हाथियों का प्रचार कर रहा है, मायावती ने कहा है। हाँ, पत्थर के हाथियों का प्रचार हो रहा है, तो ये एक कार्टून है।
एक और खबर है टाइम्स ऑफ इंडिया में कि जो अरुणाचल के पूर्व मुख्यमंत्री थे कलिखो पुल, जिन्होंने खुदकुशी की थी, उनकी सुसाइड नोट पर उनकी विधवा पत्नी ने कल उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी से मुलाकात की है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब मुख्य न्यायाधीश और एक और सुप्रीम कोर्ट के जज दीपक मिश्रा दोनों के खिलाफ FIR दर्ज कर और वित्तीय अनियमितताओं, करप्शन, भ्रष्टाचार के मामलों में इनकी जांच करने की मांग की है उन्होंने।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया अमर शर्मा अखबारों की समीक्षा के लिए। ऑस्कर अवार्ड। अमेरिका में प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑस्कर में 6 नामांकन पाने वाली फिल्म लॉयन भले ही ऑस्कर न जीत पाई हो, लेकिन उसमें अभिनय करने वाले मुंबई के 8 साल के सनी पवार ने सभी का दिल जरूर जीत लिया है। हॉलीवुड में ऑस्कर समारोह के रेड कारपेट पर अपनी भोली सी मुस्कुराहट से सभी का ध्यान खींच लेने वाले सनी पवार के घर में खुशी का माहौल है। चलिए जानते हैं कि क्या कहते हैं उनके परिवार के सदस्य और उनके दोस्त। इस हिना कुमावत की इस रिपोर्ट में सुनते हैं।
हॉलीवुड फिल्म लायन में देव पटेल के बचपन का किरदार निभाने वाले 8 साल के सनी पवार ऑस्कर समारोह में छाए रहे। बॉलीवुड में एक्शन फिल्मों को पसंद करने वाले सनी कुछ बड़ा तो करना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसका अंदाजा नहीं था कि वे सीधे हॉलीवुड में ही कदम रखेंगे। मुंबई के उपनगर सांता क्रूज से सटे कलीना के झुग्गी इलाके में रहने वाले सनी पवार के घर में इन दिनों खुशी का माहौल है। उनकी माँ बसु पवार को तो यकीन ही नहीं कि उनके बेटे ने जो सपना देखा उसे पूरा कर लिया।
जैसे वो सोचता था, जब ही वो छोटा था तो मुझे पता था मम्मी मैं क्रिश जैसा बनना चाहता हूँ, सब दुनिया पे छा जाना चाहता हूँ। सच्ची में उसने पूरा दुनिया में पूरा पब्लिसिटी ऐसा किया है कि हम लोग सोच भी नहीं सकते कि वो बच्चे ने ऐसा सोचा, उसने करके दिखाया।
ऑस्कर के रेड कार्पेट पर सूट बूट पहने सनी ने सभी का मन मोह लिया। इधर 2x2 के एक छोटे कमरे में 20 लोगों का सनी का परिवार सारी रात जागकर सनी को देखता रहा। 27 साल की माँ को जहाँ इस बात पर गर्व है, वहीं इस बात की खुशी भी कि इतनी सफलता के बाद भी सनी एक आम बच्चा ही है।
हाँ वो तो बन गया है वो तो पूरा छा गया, उसके फ्रेंड्स इतने अभी आएंगे तो उसको छोड़ेंगे भी कि नहीं, क्या बोलूँ, ए सनी ऐसे चिल्लाते रहेंगे, अभी बोलेगा अभी तू हीरो बन गया, हम लोग से बातें नहीं करेगा, अभी मिलेगा नहीं, वो बोलते नहीं रे मैं आता हूँ, अपना तो चलता रहता है, अपना खेलना कूदना तो ऐसे ही रहता है, जब भी वो आया था नेक्स्ट टाइम से वो सब दोस्तों को ऐसे ही डाला बोला, ए ऐसा सोच मत मैं हीरो बन गया, मैं तुम लोग का सनी दोस्त हूँ ना तो दोस्त ही रहेगा, ऐसा मैं चेंज नहीं होएगा, ऐसा वो बात कर रहा था। मैं सोचा चलो जितना बच्चा बड़ा बन गया उसको लग रहा है कि मैं इतना बड़ा हो गया, तो अपना जूना दोस्त वो जो गरीब से रहते हैं ना वो बहुत अच्छे रहे।
सांता क्रूज में पतली सी गली सनी के घर तक जाती है। सनी के पिता दिलीप पवार मुंबई महानगर पालिका में सफाई कर्मचारी थे, लेकिन 2 साल पहले उन्होंने नौकरी छोड़ दी और बेटे के साथ पूरी दुनिया घूम रहे हैं। पिछले 40 सालों से शिवसेना से जुड़े रहे सनी के दादा भीमा पवार जहां उसे फिल्मों में देखने की इच्छा तो रखते हैं, वहीं उनका ये भी मानना है कि सनी के लिए पढ़ाई भी बहुत जरूरी है। उनके 4 साल के छोटे भाई जिग्नेश को तो बस इतना पता है कि वो पापा के साथ घूमता रहता है। उधर सनी को हॉलीवुड के इस फिल्म में रोल पाने के लिए ऑडिशन से गुजरना पड़ा जिसमें 800 बच्चे थे, लेकिन निर्देशकों को पसंद आई उसकी मासूमियत। सनी के प्रिंसिपल नसरीन शेख भी आज उसकी सफलता से खुश है।
सनी एक्चुअली फर्स्ट स्टैंडर्ड में जब था तब हमारे पास एक कास्टिंग टीम आई थी, उसकी भी एक कैंडिडेट जो थी वो हमारी एक स्टूडेंट है ऐश्वर्या, तो शी हैड ब्रॉट देम एंड देन दे केम फॉर सिलेक्शन। हमारे नीचे एवी रूम है वहाँ पर ही उसका सिलेक्शन हुआ। पूरे बच्चों को हमने भेजा था, अबाउट 800 स्टूडेंट्स वी हैव इन द प्राइमरी, ऑल वर सेंट फॉर द ऑडिशन।
आज अपनी क्लास में स्टार चाइल्ड बन चुके सनी के दोस्त उसे क्लास में मिस करते हैं, खास करके उसके साथ बैठने वाला उसका पार्टनर श्लोक।
वो शरारती नहीं करता, वो टीचर का वो कभी आता नहीं है और कभी कभी वो शूटिंग को चले जाता है, फिर आता है फिर टीचर को पेपर दे के चले जाता है।
हाँ, तो आप उसको मिस नहीं करते?
मैं उसको बहुत मिस करता हूँ।
इस बीच सनी के दोस्तों को उसके आने का इंतजार है ताकि वो उसकी कहानियाँ सुन सके। यूँ तो उनकी ये फिल्म उनके परिवार या दोस्त में से किसी ने नहीं देखी, लेकिन उसकी सफलता से हर कोई खुश है। मुंबई से हीना कुमावत।
तो सनी पवार आजकल बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं, और अब कार्यक्रम में बात करेंगे खेल समाचारों की।
बीबीसी खेल समाचार के साथ मैं हूं वैभव दीवान। आईसीसी मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पुणे में खेले गए पहले क्रिकेट टेस्ट की पिच को खराब रेटिंग दी है, जहां मेहमान टीम ने 3 दिन के भीतर ही मैच जीत लिया था। ये पहली बार नहीं है जब मैच रेफरी ने भारतीय पिच को लेकर नकारात्मक टिप्पणी की है। आईसीसी ने बयान में कहा है कि यह रिपोर्ट बीसीसीआई को भेज दी गई है, जिसके पास अब जवाब देने के लिए 14 दिन का समय है। इस मुद्दे पर बीसीसीआई का क्या रवैया होगा और क्या कभी पुणे में अगला टेस्ट मैच आयोजित होगा, बीबीसी हिंदी ने बात की वरिष्ठ पत्रकार अयाज मेमन से और जाना।
फॉर्मली आपको रिप्लाई तो देना होगा, और वो भी जब रिप्लाई देंगे तो शायद और कुछ उदाहरण भी देंगे जहां पर मैचेस बहुत जल्द खत्म हो गए हैं। हमने देखा हाल ही में साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को बहुत जल्द हरा दिया था। तो ऐसा नहीं है कि टेस्ट क्रिकेट में होता ही नहीं है कि टीम 2 बार कोलैप्स हो जाए या लो स्कोरिंग मैचेस हो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लो स्कोरिंग मैचेस बहुत ही दिलचस्प होते हैं। यहाँ पर जो टेक्निकल कमिटी है आईसीसी की, उन्हें ये देखना होगा कि क्या यहाँ पर कॉन्टेस्ट बनने के चांसेस थे या नहीं थे। अगर ये बताता है कि पिच की वजह से मुकाबला बिल्कुल बन ही नहीं सकता था, बिल्कुल वन साइडेड हो गया था गेंदबाजों के हक में, तो शायद वो बीसीसीआई को फिर से कहेंगे या मेरे ख्याल से एक वार्निंग देके लेट ऑफ कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर अब तो खैर क्या एक्शन, कुछ ज्यादा से ज्यादा ये कह सकते हैं कि पुणे में आप दूसरी बार टेस्ट मैच ना रखें जब तक पिच इम्प्रूव ना हो जाए।
बीबीसी खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही।
खेल समाचार सुना रहे थे वैभव दीवान। एक सवाल, क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान की जिंदगी का सबसे दुखद दिन कौन सा है? यदि नहीं तो मनोरंजन सेक्शन में ये कहानी पढ़ने के लिए आई हमारी वेबसाइट पर। और इससे पहले की कार्यक्रम में हम आपसे विदा लें, मुख्य समाचार एक बार फिर से सुनते हैं।
बीबीसी समाचार। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ देर बाद अमरीकी संसद के संयुक्त सत्र को पहली बार संबोधित करेंगे, जिसमें उम्मीद है कि वे सैन्य खर्चों को बढ़ाने और स्वास्थ्य सुविधाओं की कायापलट करने की अपनी योजनाओं के बारे में बता सकते हैं। सीरियाई सरकार पर प्रतिबंध लगाने की संयुक्त राष्ट्र की कोशिश पर रूस और चीन ने वीटो कर दिया है। व्हाइट हाउस ने पिछले हफ्ते अमेरिका के कैंसास में हुए हमले की निंदा की है, जिसमें एक भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोतला की मौत हो गई थी। फ्रांस में 4 युवतियों को चरमपंथी हमले की योजना बनाने के संदेह में गिरफ्तार किया गया है। ब्रिटेन में वैज्ञानिकों ने इस बात की पुष्टि की है कि मोटापा और कैंसर के बीच मजबूत संबंध है। बीबीसी समाचार।
तो बीबीसी हिंदी सेवा की पहली सभा नमस्कार भारत के इस अंक में बस इतना ही। आज स्टूडियो संभाल रहे थे तिलक राज भाटिया। शाम 7:30 बजे दिन भर कार्यक्रम लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक बीबीसी हिंदी का डिजिटल पन्ना आपके साथ है। मोहनलाल शर्मा को विदा दे, नमस्कार।